हमने तकरीबन 8 नुक्ते किए हैं ना इस सूरत के अंदर जो बुनियादी थे। अगर आप खोल लीजिए बुक का पेज नंबर 111, 111, तो इसमें नवा पॉइंट अब हम देखेंगे। सूरत अल अनाम में बाबरकत और फैज़ रिसा यानी मुबारकुन कुरान पर ईमान लाने की दावत, यानी सूरत का एक बड़ा मजमून क्या है कि इस मुबारक कुरान पर ईमान ले आओ। कैसे? मुशरिकीन ने मक्का से मुतालबा किया गया कि वो बाबरकत कुरान पर ईमान लाएं, इसकी पैरवी करें और इसी सूरत में इन पर रहम किया जा सकता है। इसके दलाइल देखिए आयत 92, वहास किताब नंजलनाहु मुबारकुन, और ये एक किताब है जिसे हमने नाजिल किया है, बड़ी खैर और बरकत वाली है। अल्लाह हमें इसका यकीन दिला दे। देखिए जिनको दावत दी जा रही है इस किताब पर ईमान लाने की, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस किताब को समझने, मानने, पढ़ने, पढ़ाने वाले हैं। हमें तो खुद को मुबारकें देनी चाहिए एक दूसरे को कि अल्लाह तेरा शुक्र है, हमें अल्लाह ने डाला नहीं मुश्किलों में। आज भी कई ऐसे लोग हैं, 5-5, 10 साल से उन पर काम हो रहा है, ज़ुबान पर कलमा नहीं आ रहा, क्योंकि मसलतें हैं। घर छोड़ दूँ, मियाँ छोड़ दूँ, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। मुझे आपको अल्लाह ने इस तरह की आजमाइश में नहीं डाला। हम तो कुरान पढ़ें तो हमारे घर वाले खुश होते हैं। हम तो लोगों को कि हम कुरान पढ़ते हैं वो कहते हैं दुआएं करें, फूंक दें, दम कर दें। हाँ, तो हमें इस किताब पर ईमान लाना मुश्किल नहीं। इसके बावजूद अगर हम इस किताब का हक ना अदा करें तो कितना जुल्म होगा। फिर इसी तरह से दूसरी दलील आयत 155 में, वहाज़ा किताब अनज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिउहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, और ये किताब है जिसे हमने नाजिल किया है, बड़ी बाबरकत है, पस तुम इसकी पैरवी करो और तकवा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कहिए दिल की गहराई से अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये किताब आपके मेरे हाथ में है। लोग तो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको मुझे इस किताब की खिदमत के लिए अगर चुन लिया है तो यही इतनी बड़ी नेमत है, यही है शुक्र का सर चश्मा। इधर से फिर खैर फूटती है, फिर आप कभी अपने इस पढ़ने, पढ़ाने, आने, बैठने, खिदमत को बोझ नहीं समझते। ये तो बरकत है। देखिए कभी ऐसा होता है ना, लोग खुशी खुशी मेहमानों को बुलाते हैं, बेटे की शादी है मसलन है, तो घर वाले कहते हैं हाय इतना इहतमाम, इतना तकल्लुफ, आपको इतना खर्चा करना पड़ा, तो वो क्या कहते हैं आगे से, ये हमारी खुशी है, इट्स आवर प्लेयर, ये तो खुशी का मौका है। आप अपने इस कुरान के लिए भाग दौड़ पे अपने आप को मुबारकें दें, खुश हों। लोग आपका मुंह देखकर क्योंकि हाय बेचारी, हाय अभी तुम पढ़ रही हो, हाय तुम अभी भी जा रही हो, अल्हम्दुलिल्लाह। एक साथी ने मेरे से शेयर किया, कहने लगी कि कुछ साथी थे तो उन्होंने ऐसी बात की, तो जैसे नूरुल कुरान या क्लासेस का जिक्र था, तो उनको देख के कहती हैं तुम अभी भी वहाँ फंसी हुई हो। उसने ऐसी बात की तो वो कहती है मैंने उसे कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने और कुछ नहीं कहा। कहती मेरे कहने से वो एकदम दुबक गई कि मैं फंसी फूसी नहीं हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र कर रही हूँ कि मैं उधर हूँ, मैं आप जैसी नहीं हूँ। यानी कहने का मतलब ये कि जो नहीं आता वो दूसरे का भी टांग खींचता है, उसको ये होता है कि ज़रा सुन लूँ। वो कहते हैं ना कि हमने रोज़े रखे तो दिन भी लंबे हो गए, या किस तरह की बात है कि हम नहीं जाते तो अब कोई जाता ही नहीं, अब तो काम ही कोई नहीं हो रहा, लाशऊर ये सुनना चाह रहा होता है। तो जब उनको पता चले कि नहीं माशाल्लाह आप बड़े और लोग हैं और बहुत आ रहे हैं, बहुत आप नहीं हैं तो क्या हुआ, तो उससे अगले को फिर ज़रा सा गिल्ट होता है। जी आप
जी उस्ताद जी, मुझे अक्सर ये चीज़ सुनने में मिलती है कि भाई आप भी इस तरह हैं, आपके घर से बाहर से कि आपकी सेहत नहीं, आप ये नहीं, आप वो नहीं, तो आप उधर जा रही हैं, आप ये करती हैं, वो करती हैं, तो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दवाई ये है कि मैं उधर जा रही हूँ
नहीं, आपने कहा कि
तो
मैं बीवी भी हूँ, अभी तक 25 साल से एक ही घर में हूँ, मैं माँ भी उन्हीं बच्चों की हूँ, छोड़ा है आपने उनको? लोग
उन्हें
ये
अच्छा
क्यों
नहीं लगा
सोचते
कि
हैं
उन्हें
कि ये एक
कभी नहीं
पार्ट टाइम
फील
काम
कराया, उन्हें
है।
कभी नहीं फील कराया। अगर वो मुझे पूछता है ना क्लासों में कितने लोग आते हैं, क्या करते हैं, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स हो रहा है, ये कोर्स हो रहा है, मैं कभी नहीं कहती कि 4 लोग आ रहे हैं, 5 लोग, मैं कहती हूँ कोर्स हो रहा है,
बिल्कुल हो रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह
देखिए हमारे लिए तो एक भी बहुत है,
अल्हम्दुलिल्लाह
याद रखें ये आपका मेरा अपना नसीब है,
अपना
अल्लाह
नसीब
ने हमें दे दिए मौके, हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं नहीं उठा रहे। और आप देखें जो कुरान छोड़ता है वो क्या पकड़ता है, दुनिया पकड़ता है, या कपड़े पकड़ता है, या खाने पकड़ता है, या दावतें पार्टियां, खुशी वहाँ भी नहीं मिलती। इधर से मुफ्त में आपको रोज़ इलाज होता है, फीस रख देना तो फिजियोथेरेपिस्ट को जो घंटों के हिसाब से लोग दे के आते हैं, इधर दें तो फीस ही ना दे पा सकें। ये इतना प्यारा बरकतों वाला कुरान है। फिर इसी तरह आप देखिए अगली चीज़ सूरत अलनाम में सिराते मुस्तकीम और कुरान की दावत। मुशरिकीन ने मक्का को बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी कर रहे हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुवाहिद थे। अब आप देखिए आप इसको पढ़ेंगे ना तो मुझे ख़तरा है आप क्या पढ़ देंगे, मोहिद। मवाहिद आपको करना क्या चाहिए, मैं बोल रही हूँ आप अपनी बुक पे अरब लगा लें, क्योंकि शुरू में नहीं पढ़ी जाती, बहुत सारे लफ्ज़ अरबी उर्दू के मिक्सडअप हो जाते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मवाहिद, मवाहिद कौन होता है, एक कहने वाला, वाहिद तौहीद से अल्लाह को एक मानने वाले थे और मुशरिकीन में से नहीं थे। इसकी दलील आयत 161, قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ। कह दीजिए कि मुझको हिदायत दी मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ, दीन है कय्यम, मिल्लत इब्राहिमी जो यकसू थे और वो नहीं थे मुशरिकों में से। कितना कॉन्फिडेंस इस एकायत में, अल्लाह के नबी के सामने तो सारा मुआशरा ही दूसरे रुख का था, और आप कितने इत्मीनान से कह रहे हैं इन्नी हदानी रब्बी ला सिराते मुस्तकीम। अब अगर आप यह याद कर लें, कोई आपको कुछ कहे क्या हो गया, बहक गई हो, किधर लग गई हो, क्या, तो कह दीजिए इन्नी हदानी रब्बी ला सिराते मुस्तकीम। सीधा रास्ता देख कर तो कोई नहीं पलटता। दीनन कय्यिमा मिल्लत इब्राहिमा। तो कम अज़ कम इस लेवल पे जिस पे अब आप लोग आ गए, यहाँ आकर दीन को पार्ट टाइम नहीं समझना, और दीन कोई ख़त्म होने वाला सिलसिला नहीं है, यानी आपका ये आना बैठना पढ़ना पढ़ाना सीखना ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। कम लोग पहुंचते हैं, लेकिन जो पहुंच जाएं उनको इस बात का यकीन आ जाना चाहिए कि इधर से वापसी का रास्ता कोई नहीं है, और अल्लाह ना करे कभी हो, निकलेंगे तो वो या तो फिर धक्के ही खाएंगे दुनिया के। आप ज़रा कभी ऐसे लोगों से मिलें जो बड़े जोश खरोश के साथ आते थे, मेरा बड़ा दिल करता है मैं मिलूं, लेकिन लोग मुझसे मिलते नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं मिलते। हालांकि अल्लाह की कसम मैं उनको एक बार भी नहीं कहूंगी आप क्यों नहीं आते, लेकिन मेरा दिल करता है मैं उनका दिल खोल के पूछूं कि सुनाएं दिल की क्या हालत है, एतमाद कैसा है, खुशी है, सुकून है, आप डिप्रेशन है नहीं, आप फारिग हैं बहुत, आपको बहुत मसरूफियत लगती थी इसमें, अब आप फारिग हैं, अब घर बड़ा मैनेज हो गया है, अब घर साफ है, अब बच्चे बड़े खुश हैं, अब मियाँ रोज़ थैंक यू कहकर सोते हैं आपको, मेरा नहीं गुमान के इसमें से कोई भी बात होगी। आप देखिए यहाँ से हम एनर्जी लेके जाते हैं ना, घर जाकर यकीन करें एक घंटे में भाग दौड़ के हम सारे काम नहीं कर लेते। ये एक इतना खूबसूरत रास्ता है, इसको जिसने अपना लिया उसकी अपनी ज़िंदगी, और ये आपके अपना वक्त है। सारा दिन बच्चों में खप खप के माएँ दुखी हुई होती हैं, चिड़चिड़ कर रही होती हैं, मैं समझाती हूँ कुछ लोगों से बात होती है, मैं कहती हूँ देखिए आप इतना बच्चों की पढ़ाई को सर पे ले रही हैं, आपके बच्चों को पढ़ाई से नफरत हो जाएगी। आज वो मासूम नहीं बोल रहे, लेकिन उनको पता है माँ ऐसे तो थानेदार बन के हमें पढ़ाने बैठती थी, और उठना नहीं और हिफ्स करना, ये करना है, वो करना, इनको चिढ़ हो देगी। आप इंजॉय करें, आप भी इंजॉय करें, बच्चे भी करेंगे। तो अगर ये बच्चे को आप डांट डांट के पढ़ा रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन वाकई हम चिड़चिड़े हो जाते हैं जब हम कुरान की तरफ नहीं आते, तो इसकी बरकतें नज़र आती हैं। फिर इसी तरह से आयत 153 में मुशरिकीन मक्का को दावत दी गई कि वह रसूलुल्लाह के सीधे रास्ते की पैरवी करें जो तौहीद और निजात का वाहिद रास्ता है। वन हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फ़त्तबेउहु वला तत्तबिउ सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिही। खौफ आना चाहिए इस आयत को पढ़ते हुए कि ये मेरा रास्ता है सीधा, बस तुम भी इसकी पैरवी करो और ना मुतफरिक रास्तों पे चलो, क्योंकि कहीं तुमको ये रास्ते से जुदा ना कर दें। एक दफ़ा आप रास्ता छोड़ें फिर देखिए अब जाते किधर है। एक सीधा रास्ता छूटता है तो कई गलत रास्ते खुलने लगते हैं। तो हमेशा अपने आप को बांध के रखें, ये मैंने आपने खुद को खुद बांधना है, दूसरों की बातों पे यकीन कर लेना चाहिए। जो लोग इस रास्ते पे चले और जमे रहे और फोकस्ड रहे वो कहीं पहुंच गए, और जो इधर उधर मुंह मारते रह गए उन्होंने एंड पे कुछ भी ना पाया, अल्लाह ताला बचा के रखे। फिर उसके बाद देखिए 11वां पॉइंट क्या है, सूरत अलनाम में तौहीद खालिकियत और रबूबियत से तौहीद अलूहियत पर इस्तदलाल। अब देखिए जुमला आपको मुश्किल लगेगा, आप समझें इसको, जब ऐसा कोई जुमला आए ना तो आप कैसे करें उसको ब्रेक डाउन करें। तो सूरत अलनाम ठीक है, में तौहीद खालिकियत वो क्या होती है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह ने सबको पैदा किया, अल्लाह खालिक कुल्ली शैन, सूरह जुमर में आता है बिल्कुल एंड पे, ठीक है हो गया। फिर क्या है रबूबियत, रबूब कौन है, रब, अंडे को चूजे में बदलने से कोई रोक सकता है, वो अल्लाह की ज़ात है ना। तो गोया के तौहीद खालकियत और रबूबियत ये दो लफ्ज़ याद हो गए। आज आप देखें सूरत अलनाम की सारी तौहीद की किस्मों के नाम याद हो गए, कितना बड़ा ख़जाना आपने ले लिया, बग़ैर बुक पढ़े कुरान की आयतों से ही आपको तौहीद की पाँच छः किस्में अलग समझ आ गई। ठीक है, तो क्या पता चला, खालिक हकीकी वो है, रब्बे हकीकी वही है, इससे तौहीद अलूहियत। अब ये कौन सी होती है, इबादत, नमाज, रोज़ा, सजदा उसका हक है, दो काम देखिए, तौहीद खालकियत और रबूबियत के अल्लाह के काम है, अल्लाह ने खल्क की तख्लीक की, समझें इसको ज़रा, अल्लाह ने खल्क की तख्लीक की तो वो खालिक है, अल्लाह रब है, ज़र्रे को कमाल तक पहुंचाता है तो वो रब है, ये दो काम अल्लाह ने करने हैं। तौहीद अलूहियत के आपने करना है, क्या उस रब की इबादत करनी है, बात वाज़ेह, और सिर्फ उसी की करनी है क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसको आसान जुमलों में कहूँ, कायनात में फैली हुई अल्लाह ताला की कुदरतें और उसके शाहकारों को देखकर उसकी इबादत करने को दिल करता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसकी दो दलीलें हैं आयत 102 में, सिर्फ़ और सिर्फ अपने खालिक और अपने रब की इबादत का हुक्म दिया गया जिसके अलावा कोई इलाह नहीं, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुवा खालिकु कुल्ली शयइन फअबुदूहु व हुवा अला कुल्ली शयइन वकील, ये है अल्लाह तुम्हारा रब, नहीं है इसके सिवा कोई मगर खालिक है हर चीज़ का, बस उसकी इबादत करो और वो हर चीज़ पर वकील है, कारसाज है। ठीक है, फिर इसी तरह आयत 106, रसूलुल्लाह को वही की पैरवी करने का हुक्म दिया गया, क्या सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को इलाह तस्लीम कर लेने और मुशरिकीन से एराज का हुक्म दिया गया, इत्तबी मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक ला इलाहा इल्ला हुवा वारिद अनिल मुशरिकीन, पैरवी कीजिए उस चीज़ की जो आपकी तरफ वही किया गया आपके रब की तरफ से, नहीं है कोई इलाह मगर वही, और एराज कीजिए मुंह फेर लीजिए मुशरिकों से, ये आयत 106 है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ हमने तकरीबन 11 डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं जो इस एक सूरत में थी, ये तो थी रैंडम चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह जहन दिल दिमाग खुल गया कि इस एक सूरत के अंदर इतना कुछ है, और मुझे पढ़ते हुए एहसास हो रहा है कि वाकई फिर हर आयत के साथ फरिश्तों का नज़ूल होना चाहिए, और मैं ये भी सोच रही हूँ कि जब ये इकट्ठी पूरी की पूरी सूरत अल्लाह के नबी के कल्बे अतर पे उतरी होगी तो आपका दिल कितना रोशन हो गया होगा, क्यों वो ऊँटनी आपका बोझ ना बर्दाश्त कर सकी, और जैसे एक स्ट्रेच में आप पूरी कहानी सुन लें या पूरा आपको स्टोरी पता लग जाए तो उसका एक मज़ा भी अलग है, यानी मैं इसको अल्लाह के नबी के एंगल से फील कर रही थी तो मुझे मज़ा आ रहा था कि अल्लाह के नबी ने कितना इंजॉय किया होगा, ये भी है वो भी है, एक होता है आपको थोड़ा थोड़ा करके कोई एडवाइस देता है उसका भी फ़ायदा होता है, पर इकट्ठी इतनी लंबी घंटा पूरा बैठकर आपको बहुत अच्छी एडवाइस देती जाए तो आप बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें तो हर पॉइंट ही समझ आ गया है। तो मेरा अक्सर दिल करता है कि नबी सल्लम की वो कैफियत जो नज़ूले कुरान के बाद होती थी वो फील करूं, पूछूं कभी मौका मिले कि अल्लाह के नबी आपको क्या लगा, या ऐसे ही है कि जैसे आपको पूरी सूरत का तर्जुमा जुबान ही याद हो गया, अब हमारे लिए तो अरबी उर्दू का इशू है ना, तो अल्लाह के नबी पे तो अरबी भी उतरता था अरबी में, तो ये ऐसे ही जैसे आपको पूरी स्टोरी उर्दू में किसी ने सुना दी तो आप सारी समझेंगे ना, तो अल्लाह के नबी इसी तरह जब आप पे वही उतरती थी तो आप पूरे कलाम को समझ रहे होते थे, कहीं मुशरिकीन के ऊपर तनकीद है, कहीं आपको दावत की बातें हैं, कभी पिछले अंबिया की कहानियाँ, तो आप इंजॉय कितना ज़्यादा करते होंगे, अल्लाह हमें भी कुरान को इसी तरह लेने वाला बना दे। अब आखिरी हिस्सा इसके अंदर सूरत अल अनाम का नज़्म जली, तो जो हमने पहले पेज पे नक्शा देखा था याद है आपको नज़्म जली, उसी में हमने बात की थी कि 7 टॉपिक हैं, अब ये जो हिस्सा होता है सेकंड लास्ट पार्ट होता है इस पूरे सेशन का, तो इसमें वही बात जुमलों में लिखी हुई है, फिर दोहराती हूँ, जो फ्लो चार्ट शुरू सूरत में हम डिस्कस करते हैं ना, ये हिस्सा उसी फ्लो चार्ट की डिटेल्स हैं, अगर ये बातें सुनते वक्त आप रख लें नज़र में तो बिल्कुल वही चीज़ है, मसलन सूरत अलानाम 7 पैराग्राफों पर मुश्तमिल है, पैराग्राफ से क्या मतलब है, टॉपिक, 7 मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, हमने वहाँ देखा था आयत 1 से 73 पहला पैराग्राफ था, मुश्रिकीन मक्का यानी बनी इस्माइल से मुनाजिरा और मुजादिला करके इनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई थी, इस पर हम वहाँ बात कर चुके, थोड़ी इसकी डिटेल्स हैं, पहले अल्लाह ताला का तारुफ है कि वो खालिक अर्ज़ो समा है और इंसान को मुकर्रा वक्त तक इस ज़मीन में रखेगा, मुकम्मल इल्म रखता है, फिर मुश्रिकीन मक्का के खिलाफ फर्द जुर्म है चार्जशीट, मुश्रिकीन मक्का मखलूक को खालिक के बराबर समझते हैं, शक में मुबतला हैं, हर मुहकम दलील के बावजूद एराज और इज्तनाब का रवैया अख्तियार करते हैं, हक को झुटला कर इसका मजाक उड़ाते हैं, कुरान को खुला जादू समझते हैं। अब देखिए 5 बड़े बड़े उनके अकायद बयान किए गए इधर, और बल्कि छठा भी मिला ले तो मखलूक को खालिक के बराबर समझते हैं। अब आप इसको पढ़ें तो कैसे पढ़ें, क्या आज मैं इनमें से किसी जुर्म का शिकार तो नहीं हूँ, क्या मैं मखलूक में से किसी को खालिक के बराबर तो नहीं करार देती, कब्रों पे जो शिर्क हो रहा है जाके देखिए आपको इसकी 20 मिसालें मिल जाएंगी, बाबा जी भी सुनते हैं, अल्लाह भी सुनते हैं। बाबा जी कौन है? मखलूक। अल्लाह कौन है? खालिक। दुआओं का सुनने का इख्तियार किसका है? अल्लाह का। बाबा जी भी कबूल करते हैं, वो भी जवाब देते हैं, अल्लाह भी देता है। हालांकि अब मैं युजीबुल मुसर्रा ज़्यादा, तो आज उम्मत मुस्लिमा में कितने लोग हैं जो मुशरिकीन ने मक्का के इन अकायद का शिकार है। फिर दूसरी बात, शक में मुबतला है। आज के दौर का तो फैशन है, इस्लाम पे शक करो, कुर्बानियों पे शक, कोई ज़रूरत नहीं करने की, हजाब पे शक। बड़े बड़े मुहकम अहकाम जो इस्लाम ने हमें दिए ना, आज तक किसी ने सोचा भी नहीं उसके बारे में नेगेटिवली। इस सदी में अब उसके ऊपर शक डाले जा रहे हैं ताकि इनको, मुसलमानों को, अमल से रोका जाए। शक आ जाए तो अब तो खाता हुआ रोटी छोड़ देंगे। शक पड़ जाए इसमें मक्खी गिरी थी और किसी ने निकाल दिया, अब खाएंगे वो सालन। तो आज लोगों को शक में डालकर दीन से दूर किया जा रहा है। फिर इसी तरह से आप देखिए, हर मुहकम दलील के बावजूद एराज और इज्तनाब का रवैया है आज हम मुसलमानों का। कितनी दलीलें आप दे दें, कितने अहकाम उनको दे दें। कल एक छोटा सा क्लिप किसी ने भेजा, एक सिस्टर थी कि ऐसी कंट्रीज में से लग रही थी, तो वो रिटर्न फतवा लिखा हुआ दिखा रही थी, अब्दुल्ला बिन बास का था गालिबन या उसाइमीन का, कि जो औरत हिजाब का इनकार करती है, यानी उसको दीन का हिस्सा ही नहीं समझती, वो काफिरा है। डिसबिलीवर का लफ्ज़ है इंग्लिश में। वो साथ स्लाइड पे दिखा रही थी लोगों को कि उनका फतवा है कि जो मुसलमान औरत हिजाब को लाजिम नहीं या दीन का हिस्सा नहीं समझती, ये नहीं कहा नहीं करती, हर ना करने वाला ऐसा नहीं है कि वो ना समझे, कोई ये कहता है ना ये कुछ भी नहीं है, ये है ही नहीं ज़रूरी, तो कहते हैं वो काफिर है, डिसबिलीवर है। डिसबिलीवर को आप जिस लेवल पे ले ले, अब ये जुमला आप दूसरों को बताएं ज़रा, लोग कहें कि आप हमारे दीन पे शक करते हैं, लेकिन अमली तौर पे आज क्या है? और मैं वहाँ सोच रही थी कि बहुत सारे लोग निकाब को आज क्या सोचते हैं, इट्स गुड, एक्स्ट्रा है जो कर रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा कर रहा है। नहीं, हम जो कर रहे हैं उतना ही ठीक है, हम फूलों वाले स्काफ पहन रहे हैं तो इतने ही ठीक है, हम प्लेन डाल रहे हैं वही ठीक है, कोई कहता हम बड़े रहे कोई छोटे, हम शादियों में फैंसी पहन जाते हैं ठीक है, जो जिधर खड़ा है ना वो वहीं ठीक है। बहुत हद से ज़्यादा, बहुत किसी को अच्छे निकाब में हिजाब में देखें वो कहेंगे हाँ ये अच्छे हैं, ये ज़रा ऊँचे दर्जे पर चले गए, वैसे हम सारे नॉर्मल पे हैं। हालांकि आप देखिए कि दीन सबके लिए एक जैसा है, हमने अपने लिए जो चूज़ किए वो हमारे इख्तियार है, हम किसी के ऊपर कोई रोब नहीं डाल सकते। लेकिन आज हम मुसलमानों में मुहकम दलाइल के बावजूद एराज और इज्तनाब का रास्ता खुला हुआ है। देख लीजिए, किसको नहीं पता आज खुशी गम में क्या करना है क्या नहीं करना, तो कितने हैं जो माने। फिर कभी बच्चों के नाम पे, कभी ससुराल के नाम पे, बड़ों के नाम पे, हम सारे वो बेअमली का शिकार हो जाते हैं। फिर इसी तरह देखिए, हक को झुठला कर इसका मजाक उड़ाना, मौलवी का मजाक, दाढ़ी का मजाक, देख लीजिए अब, और कुरान को खुला जादू समझना। आज भी लोग कहते हैं ये कुरान वाले जादू कर देते हैं, ये औरतें घरों को भी छोड़ देती हैं, ये कर देती हैं, वो करती हैं। चलिए जी ठीक है, फिर अल्लाह इनको हिदायत दे। फिर इसी तरह उनका अगला अमल क्या था, रसूलुल्लाह पर एतराज़ करते हैं कि इनके साथ फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए, ये मुनकर आखरत हैं, इन्हें क़्यामत के दिन अल्लाह ताला जमा करेगा। आयत 13 में ये बात है, ज़िद्दी और हठ धर्म है, किसी दलील पर गौर नहीं करते, कुरान को पिछले लोगों की कहानियाँ कहकर टाल देते हैं। आयत 26, रोज़े क़्यामत नादिम और शर्मसार होंगे। आयत 28, मुनकर आखरत हैं, सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी ही को तस्लीम करते हैं। आयत 29, हिस्सी मोजज़ात का मुतालबा करते हैं। 37, अल्लाह की कुदरत, ताकत, विलायत और इख्तियार को साबित किया गया कि वही नफ़े और नुकसान का मालिक है, और इस कुरान के ज़रिए ने खबरदार किया जा रहा है। आयत 19, मुशरिकीन ने मक्का के सामने तौहीद के आफाकी दलाइल रखे गए। 38, फिर अनफुसी दलाइल रखे गए, ये कौन से होते हैं जी जल्दी से? सूरत जारियात में आता है, वफी अनफुसिकुम, तुम्हारी तो अपनी जान में बहुत सारी मिसालें हैं। दलाइल अनफुस कौन से? एक तो वो है जो हमारी आंख कैसे काम करती है, कान कैसे काम करता है, यानी इंसान के जिस्म के अंदर ही अल्लाह ने इतनी मशीनें रखी हैं। इसी तरह दलाइल अनफुस कौन से होते हैं? आपकी मेरी ज़िंदगी के ज़ाती तजुर्बात। घर टूटते टूटते बच गया, लोगों ने कहा औलाद नहीं होगी, फिर बुढ़ापे में बच्चा हो गया, ये बातें हैं ठीक है। तो ज़िंदगी के तजुर्बात और इंसान का जिस्म, फिर अनफुसी दलाइल रखे गए कि इंसान अजाब के मौके पर गैर अल्लाह को भूल जाता है और अल्लाह ही को पुकारता है। आयत 30, फिर तारीखी दलाइल रखे गए कि सख्त दिल कौमों को पहले दुख के इम्तिहान में मुबतला किया जाता है, फिर सुख के इम्तिहान में, और बिलाखिर इन्हें हलाक कर दिया जाता है। आयत 45, और जालिम कौमें हलाक कर दी जाती हैं। 47, अब देखिए ख़जाना है एक एक आयत के अंदर, अल्फाज को अगर आप देखें तो किस तरीके से अल्लाह ताला दुखों में डालकर हमें आजमाता है। फिर इसी तरह मनसबे रिसालत की वजाहत करके अल्लाह रसूल की सिफात का फ़र्क वाज़े किया गया, कैसे? اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام رسول لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، آیت 48 میں ہے یہ چیز. ان کے پاس خزانے بھی نہیں ہوتے اور غیب کا مکمل علم بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی کی پیروی کرتے ہیں. آیت 50، رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ صبح و شام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے صحابہ کا ساتھ نہ چھوڑے. آیت 52، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو من دون اللہ کی عبادت سے روک دیا گیا. آیت 56، رسول کے پاس قوموں کو عذاب دینے کا اختیار نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کا اختیار ہے. 57، اگر یہ اختیار ہوتا تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا. آیت 58، غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی نبی کے پاس نہیں ہیں بلکہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. آیت 59، اللہ ہی موت دیتا ہے. رسول اللہ کو ان ضدی لوگوں سے اعراض کرنے کی ہدایت دی گئی جو دنیا کے لہو اور لعب میں مبتلا ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. آیت 70، پھر نبی من دون اللہ سے بھی دعا نہیں کر سکتا جو نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی کوئی اور تو اور، نبی بھی من دون اللہ میں آتا ہے، نبی سے بھی آپ دعا کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری دعا قبول کرو. آیت 71، نبیوں کو مطیع ہو جانے، نماز قائم کرنے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا ہی حکم دیا گیا. آیت 72، اور حکیم و خبیر با اختیار خدا قیامت کو برپا کر کے رہے گا. آیت 73، تو یہ تھا پہلی 73 آیتوں کا بریک ڈاؤن. ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل یعنی مشرکین مکہ کو ہر ممکن طریقے سے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور اس میں اللہ کے نبی کو کتنے سال لگے؟ 13 سال لگ گئے. لیکن دھان کے پان جن کو نہیں ماننا تھا، اب دیکھیں مکہ کی آبادی اس وقت بھی ہزاروں میں تو ہوگی نا، اگر لاکھوں میں نہ بھی ہوئی، کتنے نکل کے آئے؟ 100 کچھ. اس سے ایک جملہ لکھ لیں، ہر دور میں ایون وقت کا نبی سامنے موجود ہو، بستیوں اور شہروں میں سے چند مٹھی بھر لوگ دین کی دعوت پہ آتے ہیں. اس پہ بندے کا دل خوشی سے بھر جانا چاہیے. بعض جب ہم کہتے ہیں بہت سارے لوگ تو آتے ہی نہیں، بہت سارے تو کچھ اور کر رہے ہیں، پھر شاید میں ہی نہ سمجھوں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو کام بہت سارے لوگ کریں نا، تو ایسے پیئر پریشر میں لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کامیاب بھی تو ہوں گے. نہیں، حق کا راستہ، قرآن کا راستہ، اسلام کا راستہ فرق ہے. بارش کا پہلا قطرہ اگر آپ بن گئے نا، تو باقی لوگ آپ کے بعد آ جائیں گے، آپ کے سامنے نہیں بھی آئیں گے اس رستے میں، لیکن آپ ان کے آنے کے انتظار میں خود اپنے آپ کو شک میں نہ ڈالیں. پھر اس کے بعد دیکھیے دوسرا ٹاپک کیا تھا، آیت 74 سے 94، 20 آیات ہیں. انبیاء کی تاریخ، دعوت توحید کی روشنی میں مشرکین مکہ سے مناظرہ اور مجادلہ کیا گیا. مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنے باپ دادا کے عقیدہ شرک کو ترک کر کے عقیدہ توحید اختیار کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر تکلف کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اپنے والد اور اپنی قوم کو صاف کہہ دیا کہ میں آپ لوگوں کو صریح گمراہی میں پاتا ہوں. آیت 74، انی اراک و قومک فی دلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں. اب ابراہیم کتنے ووکل تھے، بغیر جھجک کے سب پہ تنقید کی ہے، کرنی پڑتی ہے. سارے لوگ بیٹھے نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ جا کے کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں آپ سارے بڑے اچھے ہیں، ویسے ایسا. ہاں بھائی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. غلط تو نہیں دیکھا جا رہا، یا تو ہماری نظر کمزور ہے، ہمیں تو صاف یہی دکھ رہا ہے. تو کبھی کبھی پھر اتنے سال کے بعد یہ بات کہنی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے غور و تدبر سے کام لے کر پہلے ستاروں کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، پھر چاند کو، پھر سورج کو، اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ زمین و آسمان کا خالق کی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے. آیت 79، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی مشرکین مکہ کی طرح اپنے خداؤں کی مار سے حضرت ابراہیم کو ڈرایا، لیکن وہ غیر اللہ کی تخویف سے بالکل نہیں ڈرے. تخویف کیا ہوتی ہے؟ خوف دلانا. یعنی ابراہیم بالکل نہیں ڈرے کہ ان کے بت یا ان کی مورتیاں شاید میرا کچھ بگاڑ سکتی ہیں، اور بتایا کہ اہل توحید ہی کو امن حاصل ہو سکتا ہے، اہل شرک اور اہل ظلم کے لیے کوئی امن نہیں ہے. آیت 81، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دلیل و برہان کی حجت عطا کر کے ان کے درجات بلند کیے. آیت 82، ایک ایک پہ الحمدللہ آیت یاد ہونی چاہیے، لفظ پڑھتے ہی عربی کے آیت سامنے دماغ میں کھل جائے، یہ دعا کریں. حضرت ابراہیم کے بعد دیگر انبیاء کی دعوت توحید کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی. چنانچہ حضرت اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط علیہم السلام، 17 पैगंबरों का जिक्र किया गया कि इन सब को भी तौहीद की दावत दी गई थी। अगर ये जलीलुल कदर पैगंबर भी शिर्क करते तो इनके अमाल भी ज़ाया हो जाते। आयत 88, आप देखिए कितनी अहम आयत है, आप इसका नंबर अपनी रिमाइंडर बुक में लिख लें। वो कौन सी आयत है कुरान में जिसमें 17 नबियों का जिक्र करके कहा गया कि अगर वो भी शिर्क करते तो उनके अमल ज़ाया होते? तो फ़ौरन आप आयत 88 सूरत अल-अनाम याद कर लेंगे। मुशरिकीन ने मक्का को बताया गया कि उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ातो सिफात का इस तरह सही इदराक नहीं किया जैसा कि उसका हक है, और ये सिर्फ वही की रोशनी ही में मुमकिन है। आयत 91, तौरात के बाद अब कुरान की सूरत में इस मुबारक वही का नजूल हुआ है ताकि उम्मुल कुरा, मक्का और इसके अतराफ और अकनाफ के लोगों को खबरदार किया जाए। 92, कुरैश की मुतकब्बिर और मुफ्तरी क़ियादत को आलम नज़ा और अजाब कब्र से डराया गया। आयत 93, मुशरिकीन ने मक्का के खुद साख्ता अकीदा शिफात की तरदीद की गई। आयत 94, फिर इसी तरह से आयत फिर 95 से 113 तक तीसरा टॉपिक था शिर्क का बातिल होना और तौहीद का साबित करना, और इसके लिए आफाकी दलाइल से मनाजरा और मुजादला। अल्लाह ताला की सिफात के ज़रिए इसका मज़ीद तारुफ कराया गया कि वो रब भी है, ज़िंदगी और मौत के इख्तियार रखता है, चांद और सूरज की गर्दिश का इख्तियार रखता है, बारिश के ज़रिए सब्जियां और फल फ्राहम करता है। लेकिन मुशरिकीन मक्का इन तमाम दलाइल के बावजूद फरिश्तों और जिन्नात को अल्लाह ताला का शरीक ठहराते हैं, अल्लाह ताला के लिए बेटे और बेटियां मंसूब करते हैं। आयत 100 में अकली दलील पेश की गई इसकी कि इसकी औलाद कैसे हो सकती है जबकि कोई इसकी बीवी ही नहीं। आयत 101, मंदरजा बाला दलाइल की रोशनी में अपने खालिक और रब को इलाह और हाकिम तस्लीम करने की दावत दी गई। आयत 102, 9 मुस्लिम सहाबा को हिदायत दी गई कि दावत में शाइस्ता जुबान इख्तियार करें, मुशरिकीन के खुदाओं के लिए गलत जुबान इस्तेमाल करने से परहेज़ करें, वरना मुशरिकीन भी लाइल्मी में अल्लाह ताला को बुरा भला कह सकते हैं। 108, ये आयतें किधर है भला? 7वें पारे के एंड पे, ठीक है? तो ये आयतें आपको याद होनी चाहिए कि दूसरों को तबलीग के नाम पर भी शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, चिढ़ नहीं चढ़ानी चाहिए। मुशरिकीन ने मक्का के मुतालबात का जायज़ा लिया गया कि ये हिस्सी मोजज़ात का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ये इस कदर ज़िद्दी लोग हैं कि अगर अल्लाह ताला इन पर फरिश्ते भी नाजिल करता, कब्रों से मुर्दे उठकर इनसे गुफ्तगू कर लेते और दुनिया की हर चीज़ इनके लिए जमा कर दी जाती तब भी ईमान न लाते। ये आयत किधर है? 8वें पारे की पहली आयत, वलौ अन्ना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइका। तो इस तरह से चौथा टॉपिक इसमें आयत 114 से 121 है, शिर्क फित तशरी, शरीयत साजी का शिर्क। रसूलुल्लाह की ज़ुबान से कहलवाया गया कि मुफस्सल किताब के नाजिल किए जाने के बाद वो किसी गैर अल्लाह को अपना हकम और अपना शारे नहीं तस्लीम कर सकते। आयत 114, जबकि अल्लाह का कानून सिद्क और अदल पर मबनी है। 115, इसके बरखिलाफ़ मुशरिकीन मक्का जन्नो खिर्स से काम ले रहे हैं। आयत 116, माकूलात क्या होती हैं? खाने वाली चीज़ें। माकूलात में हलाल और हराम की वजाहत की गई कि अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह किए गए जानवर ही खाए जा सकते हैं। आयत 118, गैर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह किए गए जानवर नहीं खाए जा सकते। आयत 121। 5वां टॉपिक आयत 122 से 135, कुरैश की मुजरिम और मगरूर क़ियादत के मकरो फरेब का पर्दा चाक किया गया। कुरैश की मक्कार क़ियादत अकाबिर मुजरमीन को मुतनब्बे किया गया कि रोज़े क़्यामत या अज़ाबे शदीद से दो चार किए जाएंगे। इनका मुतालबा था कि हम इस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हमें भी रसूल बनाया नहीं जाता। आयत 124, अल्लाह ताला अहले हिदायत का सीना इस्लाम के लिए खोल देता है जबकि गुमराह लोगों के सीने गंदगी से तंग हो जाते हैं, चुनाचे वो ईमान नहीं लाते। याद आ रही याद? अफमन शराहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, और उसके ऑपोजिट सीने का घुटना। आयत 125 है, ये भी नोट कर सकते हैं आप लोग। तौहीद की दावत ही सिराते मुस्तकीम है। 126, इसका समरा जन्नत है। आयत 127, इंसानों और जिन्नात दोनों को आज़ादी इख्तियार अता की गई है लेकिन वो एक दूसरे को गुमराह करते हैं। इख्तियार के सही और गलत इस्तेमाल पर जजा सज़ा का इन्हिसार है। रोज़े क़्यामत ये पछताएंगे और ख़ुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि ये दुनिया में खो कर आखरत और रिसालत का इनकार करते रहे। आखिर में कानून हलाकत अकवाम और कानून इस्तिब्दाल अकवाम, ये क्या होता है? एक कौम की जगह दूसरी को लाना। जब एक कौम अपने हिस्से का काम नहीं करती तो अल्लाह ताला उसको निकाल कर दूसरों को ले आता है। यस्तब्दिल कौमन गैरहू की मिसाल दी गई थी पीछे भी सूरह मायदा में। अल्लाह ताला किसी कौम को लाइलमी में ज़ालिमाना तौर पर हलाक नहीं करता, इसको हाईलाइट कर लें। अल्लाह के अज़ाब कभी भी इग्नोरेंट लोगों पे नहीं आते, भोले लोगों पे नहीं आते, उन पे आते हैं जो वाकई अल्लाह की तरफ से बताए जा चुके हों लेकिन ना माने। फिर इसी तरह कुरैश को धमकी दी गई कि अब आप अपनी जगह काम करें और हम अपनी जगह, बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किसका अंजाम बेहतर होगा, जालिम हरगिज़ फलाह नहीं पा सकते। 135। और छठा टॉपिक है 136 से 154, कुरैश की बिदात और इनके शिरक फित तशरीह की वजाहत। मुशरिकीन पर फर्द जुर्म आयद की गई कि ये मवेशियों और खेतियों में अल्लाह के अलावा गैरुल्ला और शुरका के हिस्से मुकर्रर किया करते हैं। 136। कत्ले औलाद के मुर्तकिब हैं। 137। बाज़ खेतियों और जानवरों के हलाल और हराम के सिलसिले में मन घड़त कवानीन के पैरोकार हैं। आयत 139। अल्लाह पर झूठ बांधकर अल्लाह के रिस्क को इल्म के बग़ैर से हराम ठहराते हैं। 140। इस तरह अल्लाह ताला को शारे तस्लीम करने के बजाय ये खुद शारे बन गए। मुसलमानों को हिदायत दी गई कि ये वो अल्लाह की नेमतों को याद रखें, खेती कटने पर पैदावार की ज़कात अदा करें, इसराफ से बचें। 141। अल्लाह के रिज़्क़ को इस्तेमाल करें लेकिन शैतान की पैरवी से बचें। 142। अलानाम 8 मवेशियों का जिक्र करके बताया गया कि अल्लाह ने इनमें से कोई भी चीज़ हराम नहीं की, सिर्फ मुर्दार बहता हुआ खून, सुअर का गोश्त और अल्लाह के नाम के बगैर ज़िबह किए गए जानवर ही हलाक किए गए। हलाल व हराम के तशरी कवानीन अल्लाह की रहमत की दलील है, वो वसी रहमत वाला है, लेकिन मुजरिमों से अजाब हटाया नहीं जाएगा। जो जन्नो हिर से काम लेकर खुद शारे बनकर हलाल व हराम के कवानीन बना रहे हैं, अल्लाह की आयात का इनकार कर रहे हैं, आखरत पर ईमान नहीं रखते और दूसरी हस्तियों को अल्लाह के बराबर करार देते हैं। मुसलमानों को हिदायत दी गई कि वो शिर्क से बचें, वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करें, कत्ले औलाद और ज़ाहिर व बातिन की फहाशी से बचें, कत्ले नफ्स और यतीमों का माल खाने से परहेज़ करें, ठीक ठीक तोलें, गुफ्तगू में भी अदल को मलहूस रखें, अल्लाह के अहद को पूरा करें। 152। यही सिरात मुस्तकीम है, इसी पर चलें। 153। इन्हीं बुनियादी बातों की तौरात में भी तालीम दी गई। 154। और आखिरी टॉपिक 155 से 165, आखिरी 10 आयतें। जी, शारे जो शरीयत बनाए, अल्लाह ताला शारे है ना, लेकिन जब लोग अपनी मर्जी से इसको हलाल कर दो उसको हराम कर दो तो गोया कि वो अल्लाह वाला काम अपने हाथ में ले रहे हैं। आखिरी टॉपिक है 155 से 165, दावते तौहीद का खुलासा और कुरान की पैरवी का हुक्म। कुरान और रसूलुल्लाह की सूरत में आखिरी हिदायत आ चुकी है, अब इनकी पैरवी करने पर ही इन पर अहम किया जाएगा। बहुत ही प्यारी आयतें हैं सूरत के एंड पे, कुल इन सलाती व नुसुकी वाली याद रखें। दीन इब्राहिमी में तफरका पैदा करने वालों से रसूलुल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं। 158। ये मिल्लत इब्राहिमी की असास पर सीधा दीन है और सिरात मुस्तकीम है, हज़रत इब्राहिम मुशरिक नहीं थे। 161। नमाज हो या कुर्बानी, जिंदगी हो या मौत, सब कुछ अल्लाह ही के लिए होना चाहिए। शिर्क से बचकर अल्लाह की बंदगी इख्तियार करनी चाहिए। रोज़े क़यामत दूसरे बोझ नहीं उठाएंगे, इसलिए इंसान को खुद अपने आमाल की फ़िक्र करनी चाहिए। 164। आखिर में बताया गया कि इंसान को खलीफा बनाकर बास को बास पर फजीलत दी गई, ताकि लिया ब्लुवाकुम फीमा आताकुम, जो कुछ तुमको अता किया गया इसमें आजमाइश और इम्तिहान लिया जाए, और अल्लाह ताला सरीउल इकाब भी है और गफूरुर रहीम भी है, यानी जल्द पकड़ता भी है और बख्शने और रहम वाला भी है। आयत 165। तो ये देखिए, ये टोटल खुलासा था 165 आयतों का, मरकज़ी मजमून पीछे भी बात हुई आखिर में भी इसी पे बात है कि बनी इस्माइल में मिल्लत इब्राहिमी और अकीदा तौहीद के सच्चे वारिस कुरैश मुशरिकीन मक्का नहीं बल्कि नबी सल्लम है। बनी इस्माइल मुशरिकीन मक्का से मुबाहसा और मुजादला करते हुए शिर्क की मुख्तलिफ किस्मों पर तनकीद के बाद तौहीद की किस्में और तौहीद के तकाजे बयान कर दिए गए। कुरैश को अल्लाह की हाकमियत और तशरी के बारे में साफ साफ बता दिया गया कि हलाल व हराम सिर्फ अल्लाह ताला का हक है, और इस बारे में कुरैश की बिदात खुद साख्ता है। तो क्या पता चला कि पूरी सूरत में सबसे बुनियादी मजमून हलाल और हराम अल्लाह की हुक्म से होगा और अल्लाह ही इसका हक रखता है। आज भी मैं और आप किसी हलाल को हराम नहीं कर सकते, जिस तरह हम हराम को हलाल नहीं कर सकते। तो ये थी सूरत अनाम। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.